श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको। लेके सहारा यीशु का, मंजिल को पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा या हो तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे हो अंधेरा या हो तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। पास की वो मुकुट ऐसा यत्न करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी श्रोता मित्रों का, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपनी गवाहियों को पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचाएंगे, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस हमें नया जन्म प्राप्त करने के बारे में बता रहा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ मिलकर अलग अलग स्थानों पर बैठकर कर सकते हैं। जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं पत्रस की पत्री से, तो हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की सहायता करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप मुझे भी सिखाएं, मुझसे भी बातचीत करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, किसी प्रकार से निराश हैं, परेशान हैं, पारिवारिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से। प्रभु जी, आप उन्हें शांति दें, उन्हें छुटकारा दें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि उनका जीवन भी आप में नया होने पाए। आज के वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा आगे बढ़ना है, क्योंकि यह पहचान हमें दिया गया है, जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की पत्री 1:5-7। दूसरा पत्रस 1:5-7 में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। मसीही जीवन एक गंभीर बात है, परंतु हमने इसे अतिरिक्त अभ्यास बना रखा है। आज का विचार यह है कि आप अपने मसीही आचरण को अपने व्यापार जगत में, अपनी कक्षा में और अपने समाज में ना ले जाएं, परंतु पत्रस कहता है कि हमें सब प्रकार का यत्न करना है। जी हाँ, जब पत्रस आचरण के विश्वास में जोड़ने की बात करता है तो वे मोतियों के समान नहीं है, न ही यह किसी इमारत निर्माण में एक के ऊपर एक ईंट लगाने के जैसा है। मैं जानता हूं कि पत्रस पहली पत्री में आत्मिक भवन में हमें जीवित पत्थर कहता है, परंतु याद रखें कि वे सब पत्थर जीवित पत्थर हैं। इसके अपेक्षा मसीही जीवन एक विकास है, यही पत्रस का कहना है। इस पत्री के अंत में वह एक महान बात कहता है, दूसरा पत्रस की पत्री 3:18 में, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आपने किसी पेड़ को बढ़ते हुए देखा होगा। मुझे किसी ने एक 6 इंच का छोटा सा पौधा दिखाया, यहां तक कि उसने मुझे दिया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि उसे कहां लगाऊं, तो मैंने उसे अपनी खिड़की के सामने लगा दिया कि बाद में सोच समझकर उसे जहां लगाना है वहां लगा दूंगा। परंतु समय बीतता गया और अब वह एक पेड़ के समान बढ़कर बड़ा हो गया है। उसे हटाना अब असंभव है। इसी प्रकार मसीही जीवन को विकासमान होना है। जंगल में दो बातें हो रही हैं, जो वास्तव में रूपांतरण है। जीवित वनस्पति में विकास होता है और मृत वनस्पति सड़ती है। ऐसी ही एक प्रक्रिया हमारे मसीही जीवन में भी होती है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपको बढ़ना है। पत्रस हमारे विकास के गुण बताता है, कहता है, अपने विश्वास पर सद्गुण। जी हाँ, विश्वास अर्थात उद्धारक विश्वास, जिसके कारण आपको ईश्वरीय स्वभाव प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आपको पापों की क्षमा प्राप्त हुई है और प्रभु यीशु की धार्मिकता मिली है। अब इसमें आपको सद्गुण लाना है। जी हाँ, प्रथम शताब्दी के रोमियों के लिए सद्गुण का अर्थ अच्छाया नहीं था, इसका अर्थ था एक सर्वोत्तम रोमी, वास्तविक पुरुषार्थ, बल, वीरता, साहस और श्रेष्ठता। मेरे प्रियो, यही गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। संसार को ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है जो सच्चाई के लिए खड़े हों और परमेश्वर के लिए गिने जाएं। अतः पत्रस कहता है, विश्वास पर सद्गुण। तब हम आगे देखते हैं, सद्गुण पर समझ। समझ का अर्थ है परमेश्वर को उसके उद्धार में जानना। यह विकास का संकेत है। पद दो में जो शब्द आया था उसका अर्थ था ऊपरी ज्ञान। पौलुस कुलुसियों को लिखता है कि वह इससे ऊपरी ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके पक्ष में प्रार्थना करता है। उस युग में ज्ञानवाद की शिक्षा थी कि कैसे गुप्त अनुष्ठानों द्वारा ऊपरी ज्ञान प्राप्त किया जाए, परंतु पत्रस और पौलुस के लिए ज्ञान का अर्थ था मसीही जीवन में उन्नति और विकास, और ऊपरी ज्ञान एक लक्ष्य था। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे मन में स्थापित और सत्यापित करता है। मुझे याद है जब मैं अपने कॉलेज में अध्ययन कर रहा था, उस समय मैं थोड़ा संशयवादी हो गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज मुक्त विचारकों का था। मेरा विश्वास जीर्ण शीर्ण हो गया था। मैंने अपने पादरी से भी कह दिया था कि यदि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, तो मैं प्रभु की सेवा से हट जाऊंगा। उस समय मुझे विश्वास था, परंतु मेरा विश्वास दुर्बल था। आज मैं कह सकता हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, वरन मैं जानता हूं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा ने मेरे लिए इसकी पुष्टि की। पवित्र आत्मा की पुष्टि से अधिक और कुछ नहीं कि आपके मन और जीवन में वह उसे सत्य सिद्ध करे। मेरे प्रियो, मेरे युवागण मुझसे पुस्तक मांगते थे, आज भी पुस्तक मांगते हैं, जिसमें बाइबल को परमेश्वर का वचन प्रमाणित किया गया है। मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, परंतु मैंने वर्षों से एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी है। उनकी आयु में मैं केवल धर्म रक्षक पुस्तकें ही पढ़ता था, परंतु अब मैं उस स्थिति के पार हूं। मेरे विश्वास को ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मुझे हठधर्मी भी कहते हैं, परंतु सच तो यह है कि मैं हठधर्मी नहीं, परंतु निश्चित एवं संदेह रहित हूं। यदि मैं बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं मानता, तो मैं बाइबल की शिक्षा नहीं देता। जैसा कि मैंने अपने उस पादरी को कह दिया था कि मुझे उस पुस्तक में पूरा विश्वास ना हो, तो मैं इसका प्रचार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यदि एक विमान चालक कहे कि उसे अपने नक्शों पर विश्वास नहीं, तो आप संकट में हैं। परंतु विमान चालक अपने नक्शों और साथियों पर विश्वास करता है। आपको उससे विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, उसे पूरा भरोसा है, उनकी जानकारियां सही हैं। उसने अनेक बार उन मार्गों पर हवाई जहाज उड़ाया है। जी हाँ मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के वचन के बारे में विश्वास करें। जब आप उसे पढ़ेंगे और अन्यों के साथ बांटेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके मन में उसे सत्य सिद्ध करेगा और आप अपने आत्मिक जीवन में विकास का अनुभव प्राप्त करेंगे। पत्रस के मन में यही था जब वह कहता है, सद्गुण अर्थात साहस पर समझ बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन के प्रसारण में आपको साहस की आवश्यकता है। आप प्रभु यीशु का ज्ञान बिना साहस फैला नहीं सकते। समझ पर संयम। विश्वासियों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप पर नियंत्रण रखना अवश्य है। तब लिखा है, संयम पर धीरज। लोग धीरज को पराया गलत समझते हैं। उनकी समझ में किसी अगम परिस्थिति के कारण अपने दायित्व से चूक जाना। धीरज का अर्थ है कष्टों को सहन करना। धीरज का अर्थ है सहन करना। धीरज ज्ञान और साहस पर निर्मित होता है। एक बढ़ते हुए पेड़ के समान विश्वासी को साहस, समझ, संयम और धीरज में बढ़ते जाना है। तब वह आगे कहता है, धीरज पर भक्ति। भक्ति का अर्थ है परमेश्वर के स्वरूप होना। परमेश्वर के परिवार में नया जन्म लेने के बाद आप अपने परमेश्वर पिता के स्वरूप में होना चाहेंगे। आप परमेश्वर के स्वरूप में तो नहीं हो सकते, परंतु आपकी मनोकामना और आपका लक्ष्य यही है। मेरे विचार में हम सबके जीवन में एक ऐसा समय होता है जब हमारा पिता हमारा आदर्श होता है और एक दिन वह आदर्श टूट जाता है और पुत्र कड़वाहट से भर जाता है। हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर के स्वरूप होने की इच्छा रखते हैं, परंतु वह हमें निराश नहीं करेगा। जी हाँ, वह हमारा आदर्श ही नहीं, हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना और स्तुति करते हैं। अतः भक्ति में स्तुति आराधना का आशय व्याप्त है। आगे हम देखते हैं भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, अर्थात भाइयों का प्रेम। हमें अन्य विश्वासियों से प्रेम करना है। मेरे श्रोता मित्र मुझे लिखते हैं कि वे मुझसे प्रीति रखते हैं और मैं उत्तर देता हूं कि मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। मुझे बड़े अच्छे विश्वासियों से भेंट करने का अवसर प्राप्त होता है। पादरी और आम जन दोनों हम साथ साथ भोजन करते हैं, खेलते हैं, आराधना करते हैं। भाइयों के साथ मधुर प्रेमपूर्ण सहभागिता रखना बड़े आनंद की बात होती है। तब हम देखते हैं भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। भाईचारे की प्रीति अन्यों के लिए है तो प्रेम हमारे लिए होता है। इसका अभिप्राय यह भी है कि हमें पापियों से परमेश्वर का सा प्रेम रखना है। जी हाँ, परमेश्वर ने पापियों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, उसका उद्धार किया। परंतु पाप से वह घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है, और यदि पापी प्रभु यीशु को ग्रहण न करे तो उसे पापों का दंड भोगना होगा। पापी को प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि उसके स्तर पर आप उतरकर उसके साथ उसके पापों में सहभागी हों। हमें सुसमाचार उस तक पहुंचाने में उससे प्रेम रखना है। मेरे मित्रों, हम विश्वास से विरक्त मनुष्यों के साथ प्रेम प्रदर्शन करने का अर्थ है कि उन्हें मसीह में लाएं, सच्चाई को बताएं, ताकि वह भी परमेश्वर की निकटता में आ सके। दूसरा पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। यहां पर ध्यान दें, लिखा है यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे। पत्रस धर्म के बाहरी दिखावे की बात नहीं कर रहा है, अनुष्ठान और आराधना विधि की। वह विश्वासियों के मन की बात कर रहा है। जी हाँ, उसने कहा कि संसार की सड़ाहट से बचने का कारण है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के भागी हैं। सड़ाहट मनुष्य के मन में है। आगे चल करके वह कहेगा कि उद्धार से रहित मनुष्य अर्थात अभक्त मनुष्य धार्मिक रीति रिवाजों के द्वारा संसारिक बुराइयों से दूर रहता है, परंतु उसका मन नहीं बदलता। इसलिए वह कहता है ये बातें तुम में वर्तमान रहे। कौन सी बातें? पिछले पदों में व्यक्त की गई बातें विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम आदि सब हमारे मन में होना अवश्य है। लिखा है ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए। यहां फिर वह बढ़ने की बात करता है। पत्रस का गणित बड़ा अच्छा है। तब वह आगे कहता है तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी, अर्थात निष्क्रिय नहीं होने देगी। यह आत्मा का फल है। हम निष्क्रिय बैठकर आत्मा का फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यह सच है कि आत्मा का फल पवित्र आत्मा का कार्य है। इसके लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खुला रखना है, अपनी देह उसके अधीन कर देना है और दाखलता प्रभु यीशु से पोषण लेना है जो आत्मा का फल है। यह फल वही सब गुण है और अविश्वासी के लिए है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निकम्मे रहें। निकम्मे कर्मवाचक है, अर्थात इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और निष्फल कृतवाच्य है जो हमारे मन से संबंधित है। आप निश्चय ही ठनठनाते पीतल और झंझनाते झांझ विश्वासियों को देख चुके होंगे। जहां तक आत्मा के फल का प्रश्न है, वे निष्फल हैं। हम विश्वासियों को निष्फल नहीं होना है, हमारे जीवन को आत्मा के फल से पूर्ण होना है, जैसा पत्रस कहता है। मेरे मित्रों, क्या आपका जीवन किसी को प्रभावित करता है? क्या आप लोगों में परमेश्वर का वचन पहुंचा रहे हैं? दूसरा पत्रस एक अध्याय उसके 9 पद में आगे लिखा है, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अब पत्रस एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करता है। आज कलीसिया के अनेक सदस्यों में अंधापन है जो उनके जोश में कमी प्रकट करती है कि वे अपने उद्धार के प्रति अनिश्चित हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 13 और 14 पद में पौलुस कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। और कुरिन्थ के विश्वासियों को दूसरी पत्री के अंत में वह लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 13 उसके 5 पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मेरे प्रियो, यह एक कठोर बात है। आपको अपने आप को जांच करके देखना है कि आप विश्वास में हैं या नहीं। यदि आप में यह मानसिकता है कि आप विश्वासी होकर निश्चिंत जीवन जी सकते हैं, तो आप गलत हैं। यह असंभव है। आप विश्वासी हो सकते हैं, परंतु आप निश्चय ही अज्ञानी हैं। वर्षों पूर्व मुझसे एक प्रचारक ने कहा, अनेक विश्वासी विश्वासियों की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, परंतु उन्हें अपने उद्धार का आश्वासन प्राप्त नहीं है। विश्वासी की सुरक्षा कर्मवाचक है, जबकि उद्धार का आश्वासन कृतवाच्य है। पत्रस सही कहता है, जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वह भूल गया है कि उसका उद्धार हो गया है। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी स्थिति भी यही है। पत्रस आगे कहता है 1 अध्याय के 10 पद में, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, कहता है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का भली भांति यत्न करते जाओ। विश्वासी की सुरक्षा को तो चुनौती नहीं दे सकते, वह बाधित नहीं हो सकती। यदि आपका जीवन निष्ठा एवं सत्य में न जिए, तो आप अपने नए जीवन के विषय चिंतित ही रहेंगे। यह सच है कि प्रभु यीशु ने आपके उद्धार के लिए सब कुछ किया है जो आवश्यक है, इसलिए आपको अपने मसीही जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करना है। एक विवाहित जीवन को सोचने की आवश्यकता नहीं कि वह विवाहित है या नहीं। आपको तो अपने विवाहित जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा। मुझे यत्न करना होगा कि मैं वर्षों से करता हूं या नहीं और कर रहा हूं या नहीं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार मसीही जीवन के बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाना है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। मैंने अनेक विश्वासियों से बातें की है जो पाप में गिर गए, और यह एक अति रोचक बात है कि पाप में गिरने से पहले उन्हें अपने उद्धार का आश्वासन नहीं था। अतः हम देख सकते हैं कि जिसमें उद्धार का आश्वासन नहीं है, वह अपने ठोस नींव का आश्वासन भी नहीं रखता है। दूसरा पत्रस एक अध्याय के 11 पद में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ध्यान दे कि पत्रस विश्वासियों के उठाए जाने की अपेक्षा पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए मसीह के आगमन को महत्व दे रहा है। क्यों? पद 14 में वह कहता है, यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। मेरे मित्रों, पत्रस जानता था कि वह उस समय तक जीवित नहीं रहेगा, अतः वह प्रभु राज की चर्चा करता है। तब हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस एक अध्याय के 12 पद में लिखा है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। यह जानकर कि वह अधिक समय विश्वासियों के साथ नहीं रहेगा, उसमें उनको प्रोत्साहित करने की मनोकामना जागृत हुई कि वे अनुग्रह में बढ़ते जाएं, आस्था में। जी हाँ, उनमें आत्मिक निष्क्रियता आ जाएगी, इसलिए उन्हें बढ़ाना है। आज ऐसे विश्वासी हैं जो भटक रहे हैं, वे आत्मिकता में निष्क्रिय हैं। दूसरा पत्रस की पत्री एक अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूँ। कहता है, जब तक मैं इस डेरे में हूँ। वह अपनी देह को डेरा कहता है। वह जब तक जीवित है वह उन्हें इन महत्वपूर्ण बातों का स्मरण कराता रहेगा ताकि वे मसीह में बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी यह अति आवश्यक है कि हम इस बात को समझ लें कि मुझे और आपको मसीह में बढ़ते जाना है, अनुग्रह में बढ़ते जाना है, ताकि हम मसीह के सामने आ सकें। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाते बजाते उठे बैठे, केवल प्रभु की तेरी महिमा करेंगे। गाते बजाते उठे बैठे, केवल प्रभु की तेरी महिमा करेंगे। जीवित वचन को तेरे हरदम प्रचार करेंगे। पीछे ना मुड़ कर देखेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे।